ओम शांति। आज हम सभी के सन्मुख बाबा के दिल का विशेष रतन, एक नूर हम सभी के सामने है, जो इस यज्ञ के लिए खुद एक अवार्ड है, बहुतों को जीवन दान देने वाले, दिल की बीमारियों से राहत दिलाने वाले, दिलाराम के दिल में आराम करने और कराने वाले आदरणीय सतीश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं। 1995 से ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू और इसकी शाखा आबू रोड में आप सीनियर कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के पद पर कार्यरत हैं। अभी अभी भाई जी ने अपना बहुत सुंदर अपने बारे में परिचय देते हुए बताया कि वह 29 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। 1 मई 2009 में रूस के महामहिम द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। 2005 में अब्दुल कलाम जी द्वारा, 2008 में प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा, 2011 में भारत सरकार हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। केवल 16 वर्ष की उम्र में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आप सम्मानित किए गए। तन और मन का उपचार करने वाले, सरल तरीके से स्वास्थ्य लाभ सभी को देने वाले आदरणीय भ्राता जी, जो अपनी सदा ही ज्ञान की मनन शक्ति द्वारा स्वयं भी सदा मगन रहते हैं, औरों को भी ऐसे मगन स्थिति द्वारा मन की बीमारी और तन की बीमारी पर सहज कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट पेशेंट बिल्कुल डॉक्टर्स ने जिसके लिए ना कर दिया हो कि वह उसका उपचार नहीं कर सकते, आप किसी भी पेशेंट को बिना ऑपरेशन के उनके द्वारा दी गई जो कैड, आप सभी ने ये प्रोग्राम सुना होगा, उसके द्वारा भोजन और थोड़ी सी मेडिसिन्स के द्वारा एकदम रोग मुक्त रखना, ये आपकी विशेषता रही है। इन्हीं विशेषताओं को आज हम आपके इस समय के इस सेशन में सुनेंगे कि किस तरह से हम अपने मन को, अपने दिल को आराम में रखते हुए, हम भी अपने दिल में उस दिलाराम बाप को रखते हुए अपने आप को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। आदरणीय सतीश भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। भगवान बाप से जो हम रोज मुरली सुनते हैं, उस मुरली के एक एक महावाक्य को मनन करते हुए, अर्थात मनन का अर्थ क्या है, एक एक महावाक्य को मनन करना अर्थात रिवाइज और रियलाइज करते हुए उसमें मगन हो जाना। जैसे हर आत्मा, हम आत्माएं नदी हैं और शिव बाबा सागर है, तो मगन, मनन और मगन में क्या फर्क है? मनन करना बहना, बहना ऊंचे नीचे रास्तों से बहना, और मगन माना नदी सागर में समा करके सागर बन जाए। नदी सागर में समाकर क्या बन जाती है? सागर। तो मनन करते करते हमें मगन हो जाना है। तो मनन क्या है? जैसे बाबा ने जो संदेश शाम को जो मुरली थी ना, जो भी 18 तारीख की शाम को बाबा की पधरामणी का दिन, 18 जनवरी शाम, तो बाबा ने कहा ना कि जो चार बाबा ने बातें बताई, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और वायुमंडल, और हीरो, महान हीरो, ये पांच बातों को क्या करो, रिवाइज और रियलाइज, इसी को मनन कहते हैं। रिवाइज माना जो बाबा ने जो बातें बताई उसको रिवाइज करो। मुरली के एक एक महावाक्य, जैसे आज की मुरली थी या संडे कल सुबह मुरली चली, एक एक महावाक्य को रिवाइज करो। और रियलाइज में तीन बातें आती हैं। रियलाइज में पहली आती चिंतन, दूसरा आता मंथन और चौथा आता सिमरण। तो पहला रिवाइज, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर सिमरण। तो जब सिमर सिमर सुख पाओ था ना, अभी गीत बजा ना पहले भी, तो इस सिमर सिमर के मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हुए हम उसमें खो जाएं, समा जाएं, सागर में समा जाएं। ये जो मनन स्थिति, मनन शक्ति है ना, जो ये मनन शक्ति क्या करती है, हमको निर्विघ्न बना देती है। मनन शक्ति क्या करती है, देखो आज की समाज, हमारे बाबा तीन तरह के बच्चे देखते हैं। एक तो वर्णन करने वाले बच्चे हैं, दूसरे मनन करने वाले बच्चे हैं, और तीसरे मगन रहने वाले बच्चे हैं। जो वर्णन करने वाले बच्चे हैं वो नॉर्मली जो है, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, ये अधिकतर संख्या में है। जब हम द्वापर युग से, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, हमने क्या किया, शास्त्रों की कहानियों को सुनाया और रमणीक तरह से सुनाया, क्योंकि देह अभिमान था, व्यर्थ में उसमें बातें बहुत सारी जोड़ करके सुनाया। ये जो बाबा की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली है, कल की मुरली है, परसों शाम की मुरली है, उससे पहले दिन सुबह की मुरली थी। ये जो बाबा की मुरली जो है, ये जैसे एक मतलब इसमें क्या है, जैसे फल, सब्जी, सलाद, चपाती, अंकुरित, दलिया, रोटी, सब्जी है ना, और क्या है, दूध, दही, ये शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। किंतु ये जो हमने शास्त्रों की बातें सुनी, किस्से कहानियां सुनी, थोड़ी सी बाबा के गीता में भी नमक के जितना, आटे में नमक जितना है, ये जो है पढ़ते सुनते हैं किस्से कहानियां और लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी बातें सुनाते हैं, थोड़ी सी बात बाबा की होती है, बाकी बाबा की कहीं ज्ञान की बात होती है, बहुत सारी बातें मिला करके वो जैसे है कि चाट होती ना, चाट चटपटी होती है ना, खाना चटपटा नहीं होता है पर पौष्टिक होता है, उससे हमारा खून बनता है, उससे हमारी हड्डियां बनती हैं, हमारी मसल्स बनती हैं, पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। तो मुरली से आत्मा की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी बनती है, आत्मा संपूर्ण संपन्न संपूर्ण बन जाती है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। और जो ये हम खाते ना, जो ये जो इधर उधर की बातें सुनते हैं, इधर उधर की बातें पढ़ते हैं, वो चाट पकौड़ी की तरह से है, पिज्जा बर्गर की तरह से है, चिप्स की तरह से है, वो खा के हमारी हेल्थ बनती है, बीमार होते हैं, बोलो क्या होता है। तो वर्णन करने की हमको आदत है, आधा क्लब से पहले हम अज्ञानी थे, अज्ञान में हम मनुष्य के रूप में शास्त्रों की बातों को सुनते सुनाते आए, सुना सुनाया, उसमें ऐड करके और बातें मिला करके बढ़िया चटपटा बना के सुनाते थे, मजेदार बना के सुनाते थे। और बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद हम क्या बन गए, अभी भी हमारी हालत वैसी है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बाबा की बातों को मतलब सुनाया, कुछ अपना बाबा की बातें कुछ मिक्स किया, कुछ उसको चटपटा बना करके है ना उसको परोस देते हैं। तो ये है वर्णन करना, क्योंकि आदत है ना हमको विस्तार में जाने की। और बाबा कहते हैं अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, बाबा कहते हैं वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो बन गए हैं, बाबा को पहचाना, ऐसे बच्चे भी बाबा कहते हैं विशेष बच्चे हैं, क्योंकि बाबा को पहचाना है, पर वो गहराई में नहीं जाते हैं। तो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो बन गए हम, बुद्धिमान तो बन गए, क्योंकि बाबा कहते मुझे बुद्धिमान नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोलो, सेंसिबल बच्चे चाहिए, क्या चाहिए, स्पिरिचुअली सेंसिबल बच्चे चाहिए। सेंसिबल माना समझदार चाहिए, इसमें पढ़ाई की बात नहीं है। एक पढ़ा लिखा आईएएस भी या और कितनी भी बड़ी डिग्री करने वाला भी वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो है, कि तो स्पिरिचुअली समझदार नहीं बना है, एक माता जो अनपढ़ है, शायद स्कूल में भी नहीं गई, एक क्लास पास भी नहीं की है, वो समझदार, वो सेंसिबल बन जाती है। बाबा को माता पसंद है जो कभी स्कूल में भी नहीं गई, क्योंकि दिल से प्यार है बाबा का। एक एक बात को दिल से, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे अमृत वेला करना हो, चाहे मुरली सुननी हो, चाहे सेवा करनी हो, वो लगन बाबा के लिए दिल का प्यार है ना। एक एक बात बाबा की उसको प्रैक्टिकल में ले आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे 95% बच्चे ऐसे हैं जो निर्णय वर्णन करने वाले हैं, 5% बच्चे हैं जो मनन करने वाले हैं, सच्ची दिल वाले बच्चे हैं। याद है कल सुबह की मुरली जो थी संडे की, बाबा ने क्या कहा, हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा है, और हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा दिलाराम बाबा उसके दिल में क्या कर रहा है, ब्राह्मण आत्मा के दिल में, हर एक के में दिलाराम है, उसे दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रहे हैं। हर आत्मा को, हम में से अगर सच्चे ब्राह्मण है तो बाबा हमारे दिल में बैठा हुआ है, दिलाराम, दिल को आराम देने वाला, वो हमें दिल का प्यार, दिल का दुलार दे रहे हैं। प्यार माना हमें एक्सेप्ट कर रहा है और हमारी लगातार पालना और प्यार दे रहा है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा ने हम अपना बनाया है, अडॉप्ट किया है, और सदा हमारे साथ है, हर संबंध से हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है, हर जगह हमारे साथ है, हर संबंध से हमारे साथ है। कोई भी ऐसा मौका नहीं जहां पर हमारे साथ ना हो। तो अब हमें देखना कि मनन, अब देखो आप खुद को देखो कि मनन हमारा चलता है, जो बाबा की मुरली सुनते हैं हम सुबह सुबह, क्या सारा दिन उसका मनन चलता है, मन ही मन में उसका, उसको रिवाइज करते हैं क्या, उसका चिंतन चलता है, मंथन चलता है, सिमरन चलता है, क्या उसमें हम मगन रहते हैं। तो पहले बच्चे बताया था, जैसे वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, और तीसरे मगन रहने वाले। अब देखो हम इसमें से कौन से हैं, चेक कर लो, वर्णन करने वाले, प्रजा में आने वाले, सुना सुनाया उसको बहुत अच्छे सुनाया, दिमाग तक वर्णन करने के जो जो होता है, सुनते हैं ना क्लासेस में या कहीं भी सुनते हैं तो उसकी बात दिमाग तक तो पहुंच जाती है। तो जो मगन, जो मनन करते करते मगन रहने वाले बच्चे ना, उनकी बात दिल में लग जाती है, दिल में लगता है, आत्मा का दिल, ये दिल नहीं, आत्मा के दिल में पहुंच जाती है बात। और जो दिल में लग जाती है वो फिर धारणा करना बहुत सहज है, वो बच्चा भी स्पिरिचुअली सेंसिबल बन जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले वर्णन करने से बदल करके मनन करने में आना है। पर क्या आवश्यकता है कि हम वर्णन करने से मगन मनन करने वाले बन जाएं और फिर मगन रहने वाले बनना है। और मगन में रहने वाले बच्चे जो होते विजय माला के मणके बन जाते हैं। जो मनन करने वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, क्योंकि मनन करने वाले बच्चे स्वचिंतन में बिजी रहते हैं, परमात्म चिंतन में बिजी रहते हैं, स्वदर्शन फिराते, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, श्रीमत पर सारा टाइम श्रीमत का चिंतन, श्रीमत का मनन, चिंतन, मंथन, बाबा ने मुझे आज ये कहा, बाबा ने मुझे आज कहा, बाबा ने मुझे ये कहा, मुझे ऐसा बनना ही है। तो ये जो है मनन करने वाले बच्चे, क्योंकि हमेशा बाबा उनके साथ रहता ही है, सर्व संबंध से उनके साथ रहता है, तो उन्हें सदा खुशी का और शक्तियों का अनुभव होता रहता है, शक्तिशाली बन जाते हैं, तो माया उनके पास आ नहीं सकती है। ऐसे बच्चे, मनन करने वाले बच्चे सदा बिजी, उनकी लगातार बुद्धि बिजी रहती है मनन करने में, तो माया पास में नहीं आती है। और दूसरा, ऐसे बच्चे क्योंकि स्वस्थिति में रहते हैं, परमात्मा से सर्व संबंधों से कंबाइंड रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के पास माया नहीं आ सकती है। दूसरा, कोई भी परिस्थिति में घबराते नहीं है, वो अचल अडोल रहते हैं। और तीसरी बात, वो कोई भी तन की बीमारी, मतलब हार्ट की बीमारी आ गई, डायबिटीज आ गई, या कोई कैंसर आ गया, कुछ भी आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए तन का, मन का, परिवार में, प्रोफेशन में, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वो सदा निर्विघ्न रहते हैं, विघ्न रहते भी निर्विघ्न रहते हैं। क्योंकि आत्मा कैसे भी, मतलब शरीर कैसा भी खटारा गाड़ी बन गया है, किंतु बाप के साथ कंबाइंड रहकर के, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के साथ पावर हाउस से कंबाइंड रह के, क्योंकि अंग खराब क्यों होते हैं शरीर के, हार्ट की आर्टरीज क्यों ब्लॉक हो जाती है, डायबिटीज क्यों हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, लीवर खराब क्यों हो जाता है, कैंसर क्यों हो जाता है, पेट में एसिडिटी क्यों बनती है, पेट में खाना क्यों नहीं पचता है, उसका कारण है कि आत्मा में सात एनर्जी कम हो गई, उस अंग को सात एनर्जी कम मिल रही है, वो अंग के लिए एक विशेष एक एनर्जी है, वो जो स्पेसिफिक उसके लिए वो कम पहुंच रही है, क्योंकि आत्मा के पास ही कम एनर्जी है तो शरीर को कैसे देगी। तो अगर हम परमात्मा पिता से सरल संबंधों से कंबाइन रहे, उसके साथ मनन चिंतन मनन चिंतन में खोए रहे, समाये रहे, तो क्या होगा, वो सातों चैतन्य आत्मा के पास आएंगी होंगी, तो क्या होगा, आत्मा उस अंग को एनर्जी देती रहेगी, तो वो अंग फिर भी कैसा भी खराब हो गया हो तो भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो आत्मा एक अच्छा ड्राइवर बन जाती है, खटारा गाड़ी को भी ठीक से चला लेती है, राइट। तो मनन शक्ति जैसे जैसे ऐसा है, वर्णन करना और मनन करने में क्या फर्क है, वर्णन करने वाले भी खुशी तो मिलती है उनको उस समय तक जब तक वो सुनाते हैं, शक्ति भी मिलती है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं, परमात्मा ज्ञान सुन रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, किंतु वो ऐसा जैसे खाना खाया ना, मुंह के स्वाद तक रह जाता है किंतु हजम नहीं होता है, तो शक्ति नहीं आती है, खून नहीं बनता है। और मनन करना माना जैसे हमने गाय खाना खाती है ना, घास खाती है, फिर जुगाली करती है, जुगाली करते करते पेट में खाना जाते, फिर खाना पेट में पचता है, उससे खून बनता है, हड्डियां बनती हैं, अंग बनते हैं, ताकत आती है। तो मनन करना माना ऐसे, और फिर वो समाज शक्ति समा जाती है हमारे अंग अंग में, तो मगन माना फिर ऐसा आदमी हमेशा अपनी मस्ती में मगन रहता है। और ऐसे जो मनन करने वाले निर्विघ्न रहते हैं, और जो मगन रहने वाली आत्मा है सदा मगन, मनन करने में भी हम कभी मगन मनन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उसका कारण भी हम जानेंगे कि ऐसे मनन कभी कभी होता है, कभी कभी क्यों नहीं होता है, कारण क्या है। तो मगन रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सदा समाये रहते हैं बाबा की याद में, बाबा से सदा ही मतलब सदा एकदम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, एक सर्व संबंध के अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान के एक एक पॉइंट जो इतनी बाबा की मुरली में 10-15 पॉइंट होती है रोज, एक एक पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, एक एक गुण के अथॉरिटी गुण स्वरूप बन जाते हैं, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो सर्वशक्ति स्वरूप बन जाते हैं। और जब चलते फिरते से उनका निरंतर योगी जीवन हो जाता है, निरंतर तपस्वी जीवन हो जाता है, वो सदा सूरज के माफिक हमेशा चमकते रहते हैं, ज्ञान सूर्य की स्टेज रहती है उनकी हमेशा, मास्टर ज्ञान सूर्य सर्वशक्ति संपन्न रहते हैं। ऐसे बच्चे खुद तो निर्विघ्न रहते ही हैं, क्योंकि तो उनके संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा भी उनके भी विघ्न खत्म हो जाते हैं, वो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। ऐसी आत्मा जो होती है, जो मगन रहने वाली आत्मा, जैसे जैसे हमारी दादियां, अभी भी देखो रतन मोहिनी दादी जैसे हमारे पास है, दादी जी कैसी स्थिति है, सदा मुस्कुराती रहती है, 100 साल की उम्र हो गई है, एकदम हमेशा मुस्कुरा, कैसा भी बुखार हो, कुछ भी तकलीफ हो, उनका तन में मन में धन कुछ भी होता रहे, उनका कार्य है बुखार भी आ जाए, 102 बुखार भी हो जाए तो भी मुस्कुराती रहती है, कुछ भी तकलीफ हो जाए शरीर में, कहीं भी कुछ हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जाकर देखना होता है, दादी से पूछे, दादी कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुराती रहेगी। रात में भी कई बार जाके मिलना होता है, कुछ तकलीफ भी हो, ऐसा कुछ होता है तो रात में भी देखो दादी तो मुस्कुरा रही है। तो वो ऐसी स्थिति, ऐसी आत्मा कर्मातीत, कर्म बंधन से मुक्त रहती है, मगन रहने वाली आत्मा। तो हम समझते हैं कि हम कैसे मनन करें, मनन कैसे होता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, आप अपने आप को देखना, चेक करना कि क्या बाबा की मुरली मुझे अपने आप सारा दिन चलती रहती है मेरे अंदर, डिवाइस होती है जिनको मुरली ऑटोमेटिक चलती रहती है सारा दिन, वो हाथ उठाओ, ऑटोमेटिक सारा दिन चलती रहती है। ऐसे बहुत कम है, टिप्स पर होंगे, क्यों नहीं चलती, किसी ने कहा ना, हमें कुछ कह दिया, वो बात हमें बार बार याद आएगी। हमें अपने माता पिता की कही हुई बात याद आएगी, किसी हमारे युगल ने कुछ कहा तो उसकी बात याद आएगी, बच्चे की बात याद आएगी, आज दुनिया में क्या हो रहा वो बातें उभर उभर के आएंगी। बातें उसकी रिवाइज होती हैं, किसकी रिवाइज होती हैं, जो दिल में होता है। आपके दिल में क्या है, क्या है ब्राह्मणों के दिल में क्या है बताओ, मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है? मनुष्य की बुद्धि, मन और संस्कार में असत्य होता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना दो विशेषताएं हैं। सत्य पहली विशेषता क्या है? सत्य सदा होता है, एटर्नल है, उसका जन्म मरण नहीं होता है, शाश्वत है, अविनाशी है। दूसरा, सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता, अनचेंजेबल है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उसके दिल में सदा सत्य रहता है, ब्राह्मण सदा सत्य से जुड़े रहते हैं। जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की मां, सारी मनुष्य जो जाति है किसी भी धर्म के, उनकी सबकी मां है। शिव बाबा सबका पिता है और ब्रह्मा सबकी मां है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि बेहद की है, अर्थात जिसकी बुद्धि में सत्य के अलावा कुछ और नहीं है। सत्य क्या है? चार सत्य हैं, बेहद, सत्य माना बेहद, जो हद से परे है, जिसका जन्म, बेहद माना जिसका जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, सदा है, जो अपरिवर्तनशील है, उसे कहते हैं बेहद। तो ब्राह्मण माना जो बेहद, जिनकी मनुष्यों की बुद्धि में हद है, माना असत्य है, देवहान, उनकी बुद्धि में क्या है, बुद्धि में और दिल में क्या है, देवहान है, देह अभिमान है, देह अभिमान के संबंध संपर्क है, देह अभिमान के पदार्थ हैं, प्रॉपर्टी जायदाद है, और देह अभिमान से पैदा होने वाले पांच विकार, पांच आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर किए हुए कर्मों से हमारे अंदर आसुरी आदतें बनती हैं, संस्कार बनते हैं, आलस्य है, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, आदत पड़ गई, चिंता करने की आदत, मनुष्य को आदत पड़ गई, चिंता करते ही हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा भय में रहते हैं, हमेशा आलस में ही रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, किसी पे उनको विश्वास नहीं होता, निश्चय विश्वास उनको होता ही नहीं, चिंता और मतलब जरा हमेशा शक अनुमान करते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, प्रेशर में, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, टाइप ए बिहेवियर कहते हैं इसको, कंपटीशन, कंपैरिजन, ईर्षा द्वेष, ये मनुष्यों का आदत पड़ गई। तो मनुष्य की बुद्धि में भी यही रहता है, उनका मनन भी इन्हीं बातों का होता है, और चिंतन मतलब मनन भी, इसका मनन चिंतन मंथन सिमरन साधन चलता रहता है, मन में भी यही चलता है, बुद्धि में भी चलता है, और संस्कार तो उनके ऐसे ही होते हैं, इसी कारण वो दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। किंतु जब हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि, हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं। पहला है दिल, चेतना, कॉन्शियसनेस, जैसे बुलजाई होती है ना, बीच में एक सेंटर में बिंदु होता है, उसके आसपास सर्कल होता है, फिर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल, फिर फोर्थ सर्कल, पहले सर्कल में अगर हम हिट करें तो उसे कहते हैं 10/10 मार्क्स मिलते हैं, तो वो है दिल, चेतना, जिसमें आत्मा बिंदु है और आत्मा से निकलने वाली सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं। तो जिसके दिल में बाबा है, दिलाराम है, परम सत्य, परमात्मा परम सत्य है, अगर दिल में मेरे मनुष्यों को क्यों वो दूसरी बातें याद आती हैं, क्योंकि दिल जो दिल में होता है उसी का चिंतन चलेगा, उस वही बातें रिवाइज होती हैं, उन्हीं की बातें रिवाइज होती हैं, देह की बातें रिवाइज हो, कोई बीमारी की बातें रिवाइज होंगी, संबंध संपर्क में कुछ ऊपर नीचे होगा, बीमार हो जाए, कोई बीमार होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, तो वही बात बुद्धि में आती रहेगी, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे होगी, कुछ मकान में ऊपर नीचे होगा, तो उसकी वही उसका चिंतन चलता रहेगा, उसका मनन चलता रहेगा, मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, और कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस चिंता भय होगी, उसी का चिंतन चलता रहेगा, उसी का मनन चलता रहेगा, और उसी में मगन रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, किचड़े में किचड़े का मंथन मंथन करते रहते हैं, कि उससे क्या निकलेगा, बीमारियां निकलेंगी, तन के और मन के रोग निकलेंगे, संबंधों में कटुता निकलेगी, कड़वाहट निकलेगी, जो आज बाबा ने कहा था कांटों का जंगल, एक दूसरे कांटा लगाते हैं, दुख देते रहते हैं। क्यों? तो हम ब्राह्मण, हमारे दिल, हमारी दिल में क्या है, हमारे दिल में सच्चे दिल का मतलब ही है जिस दिल में ABCD, ABCD का मतलब क्या है, A4 आत्मा, B4 बाबा, C4 कनेक्शन माना संबंध, और D4 ड्रामा। जिसके दिल में सत्य की परम सत्य बाबा और उसकी मुरली, सच्ची दिल माना जिस दिल में बाबा है वो सच्ची दिल है, क्योंकि बाबा ही प्राणेश्वर है, प्राण माना आत्मा, आत्मा को एनर्जी देने वाला पावर हाउस परमात्मा है। आज आत्माएं लगभग मृत प्राय, जैसे कहें जड़ प्राय हो गई, कहने को तो हम आत्मा है किंतु मन के वश में है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो अब जब बाबा ने हमें समझ दी है, सत्य की समझ दी है, ज्ञान माने सत्य की समझ, ये समझ हमको दी है कि आत्मा के पास अगर सातो चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं थी, जब सतो प्रधान थी, सतो माने सात, सतो माने सात, प्रधान माने भरपूर, जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी तो हमारा बुद्धि भी सतो प्रधान थी, मन भी सतो प्रधान था, संस्कार भी सतो प्रधान थे, और हमारी आंखें भी सतो प्रधान थी, हमारे शरीर की एक एक सेल सतो प्रधान थी, कोई रोग नहीं था, निरोगी काया थी। और जैसे ही आत्मा धीरे धीरे, आत्मा की बैटरी कमजोर होती गई, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जा कम होती, आधी से कम हो गई, तो रजो प्रधान हो गई, द्वापर में पहुंच गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए, पांच विकार आ गए, उनके बाल बच्चे आ गए, बीमारी आनी शुरू हो गई, और कलयुग में आकर के तो हम एकदम से और एनर्जी कम हुई, और बीमारी आनी शुरू हुई, और कलयुग के अंत में लास्ट के 50 साल में 1975 के बाद से, तो इतने तमो प्रधान हो गए, एकदम से हमारे अंदर सारी बीमारियां, मतलब अब तो देखो रोग ही रोग। अब पीछे सर्वे हुआ, 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं शरीर की, मतलब हर आदमी को दो बीमारी तो शरीर की है ही है, और मन की भी छह बीमारी सबको ही है, तो 8 बीमारी सबके पास है, तन की 2 एवरेज, 5-5 छह भी है, 10-10 भी है किसी के पास, है ना, और शरीर की तो मन की तो बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये आज समय की स्थिति ऐसी है। तो अगर चिंतन किस चीज का होता है, मनन किस चीज का होता है, जो दिल में होता है। किसकी बात रिवाइज होती है, जो दिल में होता है, जो दिल में होता है। दिल में मान लीजिए किसी की माँ उसको बहुत प्यारी लगती है, तो बच्चे को माँ की, माँ बहुत प्यारी लगती है, तो बार बार माँ की कई बात उसको बार बार याद आती है। आज भी आप देखो, आप छोटेपन में जब आपकी मदर ने कुछ कहा था, आज भी वो बात याद बार बार आएगी, क्योंकि माँ दिल में अधिकतर, क्योंकि माँ सबसे प्यारी होती है हर बच्चे को, भले हम 60 साल के हो जाएं, 70 साल के, माँ ना भी हो दुनिया में, ना भी हो, शरीर छोड़ चुकी है, तो भी बचपन से उसकी कई बातें आज भी हमें बार बार याद आती हैं। क्यों, क्यों बोलो, क्योंकि माँ हमारे दिल में रहती है। वो तो फिर लौकिक माँ थी, कि तो अभी हमारी लौकिक माँ कौन सी, अलौकिक माँ कौन सी है, ब्रह्मा बाबा, और अलौकिक और पारलौकिक बाप कौन है, शिव बाबा। तो अभी बाबा हमारे दिल में है, क्योंकि अभी हम समझ आ गई है, ये सदा है। राजयोग का मतलब ही है शिव बाबा, ब्राह्मण का मतलब भी बेहद की बुद्धि, अर्थात सदा बाबा जिसके दिल में रहता है, दिलाराम। बाबा कहता है आप जिसको मुझे अपने दिल में बसाओगे ना, तो तब तुम मेरे दिल में आ सकते हो। पर बाबा कहता है पहले काल तक नशीन बनो, मतलब अपने को आत्मा समझ के यहां टिके रहो, नीचे मत आओ, कभी नाक में आ, कभी मुंह में आ गए, कभी नीचे को चले गए, कभी और चले गए, नहीं, आत्मा की अपनी सीट पे बैठो, तब मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा। तो बाबा को अपने दिल में रखेंगे, ज्ञान का सागर, जब हम बाबा को दिल में रखते हैं, और साफ दिल माना जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और ना हो, तो दिल में मुरलीधर शिव बाबा, और साफ दिल माना जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और ना हो। कई बार हम बहुत सारी चीजें इधर सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, है ना। मुझे तो याद है 2008, 31 दिसंबर 2008 को दादी जानकी जी हमें मिल रहे थे। दादी जानकी जी यूजली बाबा वाले दिन, जिस दिन बाबा की पधरावणी होती थी, तो दादी मुरली के बाद हम कुछ भाइयों को मिलती थी, 10-15 भाइयों को पीछे डायमंड हॉल के पीछे रूम है ना एक, उसमें मिलती थी, आधा घंटा लगभग मिलती थी। दादी ने उस दिन ऐसे ही पूछा, आप में से कितने भाई हैं जो मुरली अखबार पढ़ते हैं डेली? तो हमने भी हाथ उठाया, सबने हाथ उठाया, सब अखबार पढ़ते थे। तो दादी ने कहा था, मैं तो कभी अखबार नहीं पढ़ती हूँ। अखबार में क्या पढ़ते हो? वो तो रावण का मुरला है ना? तो राम की मुरली सुनने वाले, पढ़ने वाले, वो रावण का मुरला क्यों पढ़ते हैं? तब से मुझे याद है 31 दिसंबर 2008 लास्ट दिन था, उसके बाद मैंने अखबार नहीं पढ़ा। कितने साल हो गए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? कभी भी मैंने अखबार नहीं पढ़ा 2008 से, मतलब 1 जनवरी 2009 से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। तो वो लास्ट दिन था मेरा अखबार पढ़ने का, 31 दिसंबर। तो हमें बाबा को जब दिल में बसा ले, बाबा की मुरली दिल में बसा ली, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, तब समझ में आती ड्रामा की, एक एक संबंध की समझ। जब दिल में बाबा आ गया ना, तो अपने आप ही ज्ञान समझ में आने लगता है। दिल में जब तो थोड़ा भी देह विमान, मैं डॉक्टर हूं ना, ये भी फीलिंग है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, ये भी आता है, तो बाबा दिल से, फिर बाबा की मुरली समझ में नहीं आती। समझ रहे नहीं समझ रहे? एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ? जो समझते रॉन्ग है ये बात हाथ उठाओ, जो समझते राइट है वो हाथ उठाओ। थोड़ा भी देह अभिमान है ना, मैं ये हूं, मैं इंचार्ज हूं, किसी ड्यूटी का इंचार्ज हूं, ये भी फीलिंग आ गई ना। इंचार्ज का मतलब क्या है? दादी दादी जी दादी थे ना, दादी अपनी दादी प्रकाशमणि जी, मैं उनके साथ लगभग मैं 18 साल उनका पर्सनल फिजिशियन रहा। दादी जी के साथ आना जाना सब जगह मैं रहता था। सुबह सुबह 95 के बाद तो मैं रेगुलर वहीं पे रहा, मधुबन आ गया था अप्रैल 95 से दादी के साथ, मतलब रोज मुझे बैठना ही होता था, मिलना ही होता था 5 मिनट। तो दादी जब अकेले बैठी तो कुछ ना कुछ मुझे क्या तो सिखाती थी या कुछ ना पूछती थी। तो दादी ने एक दिन कहा, इंचार्ज किसे कहते हैं गुप्ता जी, इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं, दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ 48 डिपार्टमेंट थे उस समय, तो हर डिपार्टमेंट का हेड है उसे इंचार्ज कहते हैं। नहीं पर रियल मीनिंग क्या है इसका? तो दादी ने, मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने कहा, जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, इन माना अंदर रह के हमेशा बाबा से अपने आप को चार्ज करता रहे, और चार्ज करके माना ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियों से भरपूर करता रहे, और अपने मन बुद्धि संस्कार को उससे भरपूर करता रहे, अपनी आंखों को उस सातों एनर्जी से भरपूर करता रहे, मुख को जब भी बोले तो भरपूर होके बोले, किसी की बात सुने तो भरपूर होके बोले, इंचार्ज होके बोले, अपनी आंखों का इंचार्ज होके बोले, आंखों का इंचार्ज होके देखे, आंखों का इंचार्ज होके पढ़े, आंखों का इंचार्ज होके सुने, आंखों का इंचार्ज होके बोले, आंखों का इंचार्ज, मुंह का इंचार्ज, जीभ का इंचार्ज हो खाए, और अपने साथियों को, अपने परिवार, जहां भी रहते हो, परिवार में रहते हो, डिपार्टमेंट में कहां भी रहते हो, उन सभी साथियों को भी पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद के वाइब्रेशन देता रहे, उसे कहते हैं इंचार्ज। अदरवाइज क्या है, दादी कहती अदरवाइज आंख दिखाते गुस्सा करके कंट्रोल करते, उसे क्या कहते हैं? उसे इंचार्ज कहेंगे क्या? उसे क्या कहेंगे बोलो बोलो? उसे कहेंगे आउट चार्ज। क्या कहेंगे? आउट चार्ज। तो क्या बनना है हमको? इंचार्ज बनना ना। तो जिसकी दिल में बाबा है वो इंचार्ज है, बाबा वहां इंचार्ज, बाबा को अपना सारथी बना करके जब हम बाबा को दिल में, बाबा की मुरली तब समझ में आती है, तब मुरली अंदर बजती है, है ना? तब समझ में आता है कि मुरली क्या है, तब बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति होती है, और बाबा मेरे साथ है ये फील होता है हर समय, और तब जाके हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं। मैं तन में मन में धन में संबंध सब कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, हम तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड रह सकते हैं। तब पवित्रता समझ में आती है, पवित्रता की गहराई समझ में आती है। पवित्रता आती नहीं है, पवित्रता आने के लिए और पुरुषार्थ करना पड़ता है। पवित्रता की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है, गहराई समझ में आने लगती है। ये पवित्रता क्यों इंपॉर्टेंट है? शांति समझ में आने लगती है, शांति क्या है? क्योंकि 90% विचार पास से आते हैं, जो पास में हमें साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट लगी ना उससे आते हैं, तो पास वो हमें समझ में आता है कि इसको जब तक फुल स्टॉप बाबा साथ रहेगा और संबंध से बैटरी चार्ज होती रहेगी तो हम हर बात को फुल स्टॉप लगा सकेंगे। क्योंकि जो भी मेरे साथ अभी तक हुआ है या हो रहा है मेरे अपने किए कर्मों का फल है, किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया है और बाबा के डायरेक्शन में हो रहा है, किसी ने मुझे इंसल्ट भी किया है, कोई मुझे कुछ गलत भी किया, धोखा भी दिया, क्योंकि मैंने धोखा दिया हुआ था उसने मेरे को ब्याज के साथ वापस किया है और कर रहा है, तो मुझे साक्षी होकर उसको देखना है, उसे फुल स्टॉप लगाना है। कोई फायदा नहीं उसमें जाने का, सारी बीमारियां तन के मन के रोग सारे संबंधों में कड़वाहट किससे होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम उसके विस्तार में चले जाते हैं, हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, तो बाबा आता ही नहीं, अपने सत्य में टिके नहीं पाते, परमात्मा से माइंड हो ही नहीं पाते, परमात्मा को यूज ही नहीं कर पाते। तो बाबा की बातें जब हम ये फुल स्टॉप पवित्रता जिसको कहते हैं शांति, 40 विचार की बजाय 8 विचार रह जाते हैं, और फिर जब हम बाबा के साथ रहने लगते हैं ना विचार स्लो हो जाते हैं, बाबा से कंबाइंड रहने लगते हैं, तो अपने हमें बाबा का प्यार अनुभव होता है कि बाबा कैसे मेरी पालना कर रहा है, मैंने इतनी गलतियां की, इतने पाप किए, इतना मैं बाबा इस लायक अपने आप को समझता ही नहीं था, कि तो बाबा ने मुझे कितना मेरी कितनी गलती को स्वीकार किया। मुझे याद आता है जब से हमने मुरली सुननी शुरू की तब से कितनी बार बाबा के सामने हाथ उठाया, बाबा ने कहा बच्चे 6 महीने में करोगे, कितना समय चाहिए, हाँ 6 महीने में करेंगे बाबा, 6 महीने बीत गए कुछ किया किंतु फिर दोबारा अगले साल फिर बाबा ने कहा कर लिया तो 100% तो नहीं कर पाए। 2009 की मुरली में हाथ उठवाया, 2002 में उठवाया, 1995 में उठवाया, 91 में उठवाया, 89 में उठवाया, हर साल हाथ उठाते थे, और फिर भी बाबा ने कभी भी हमको ये नहीं कहा नहीं बच्चे तुमने को लास्ट ईयर तुमने कहा था हाथ उठाया था अभी भी नहीं किया तुमने, कितनी बार हमको माफ करता है। तो प्यार का मतलब क्या है, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान से स्वीकार करना और उसकी पालना करना, ऐसा उसे इसलिए कहते हैं तू प्यार का सागर है। बाबा हर आत्मा के चाहे आतंकवादी हो कुछ भी हो कैसा भी, इसलिए आपके घर में भी जो है ना, देखो आपने शोले फिल्म के बारे सुना होगा ना, शोले फिल्म में गब्बर सिंह था ना, अगर शोले में गब्बर सिंह ना होता तो फिल्म की क्या वैल्यू थी बताओ, कितने लोग देखने जाते हैं उसको। ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर गब्बर सिंह ना हो तो क्या होगा, आपकी लाइफ फिल्म देखने जैसी है क्या। इसलिए समस्याएं प्रॉब्लम्स बीमारियां तन की मन की धन की प्रॉब्लम्स घर की संबंध संपर्क की प्रॉब्लम्स यही हमको आगे बढ़ाती है, तभी हमारी फिल्म हिट होती है ना, तभी हमारा जीवन ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना तब हमें आता है, बाबा साथ होता है तो, और जब हम तब हम शांति का अनुभव, हमारी थॉट स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और जब बाबा का साथ बाबा के सबको स्वीकार करता है कब को सबकी पालना करता है, चाहे ग्लानी कर घर में ग्लानी करने वाले हों, दुख देने वाले हों, धोखा देने वाले हों, ऑफिस में करने वाले गलत करने वाले हों, उनको वो सब हमारे कर्मों का फल है, उसको स्वीकार करके उनकी पालना करना, बराबर पालना करना, ग्लानी करने वाले की महिमा करने वाले की दोनों की बराबर, इसको कहते प्यार। ऐसा प्यार समझ में आने लगता है जब बाबा दिल में आता है, ऐसा प्यार चाहिए अपनी हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए। हमें हार्ट की बीमारी क्यों होती है, महिमा करने वाले अच्छे लगते हैं और ग्लानी करने वाले अपमान करने वाले बुरे लगते हैं, तो हर्ट होते तो क्रोध आता है। प्यार मीन्स जो डेफिनेशन में बताई, जब ऐसा प्यार विश्व की हर आत्मा से हो जाता है तो बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना हम ऐसा प्यार पैदा करते हैं उतना बाबा की गोद का तब अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, ये फीलिंग आती है, सर्व प्राप्ति संपन्न की फीलिंग आती है, और तब जाकर संतुष्टता समझ में आती है, संतुष्टता क्या होती है, और तब इच्छाएं खत्म होती, इच्छाएं कम होती जाती हैं, और तब बाबा से हम लव में लीन होने की स्थिति, आनंद की स्थिति में आते हैं। तो ये जितना जितना हम बाबा को दिल में बिठाते जाते हैं ना, बाबा को सर्व संबंधों से उसके अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हैं संबंध की, तो उतना उतना दिल में बाबा बैठता जाता है, और जब बाबा दिल में बैठता जाता है तो फिर हमारी मुरली अंदर आने लगती है, उससे पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद, और तब जाके परम सत्य परमात्मा जब आनंद की स्थिति महसूस होने लगती है ना थोड़ी थोड़ी बीच में, तब परम सत्य परमात्मा को परखने की शक्ति आती है। तो परम सत्य को परमात्मा को परखने की शक्ति आ जाती है कि यही मुझे चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर कोई सपोज मुझे या आपको, आप में से अपने आप को देख लो, अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग देता हूं, मकान देता हूं बहुत अच्छा साउथ दिल्ली में, साथ में एक आपको मर्सिडीज देता हूं और 10 लाख रुपए महीने की आपको मैं हर महीने दूंगा, आप छोड़ दो बाबा को, ब्रह्मा कुमार को छोड़ोगे? बोलो, छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? तो ये परखने की शक्ति, मुझे कोई कुछ भी दे, मुझे विश्व का राज भी दे दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, है ना? ये परम सत्य को परखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में क्या है, जिसने इस परम सत्य को परख लिया, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, ये परखने की शक्ति आ गई ना, तो हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है। क्या बन जाती है? यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। तब हमारे अंदर क्या आती है, तब दिव्य बुद्धि बनती है ना, तब सही मायने में हमें ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, जैसे ब्रह्म तत्व में आत्मा आचरण करते हैं दूसरे के दूसरे के साथ, सबको मैं आत्मा, स्वयं को भी आत्मा, अपने सत्य स्वरूप में टिक के दूसरे को भी आत्मा समझ के व्यवहार करूं, तब पवित्रता की गहराई हमारे जीवन प्रैक्टिकल में आती है। तब शुद्ध सात्विक भोजन, वैष्णव भोजन, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, रासिक माना आलस्य को बढ़ाने वाला भोजन, पराठा पकौड़ा समोसा, तामसिक माना क्या, हम नॉनवेज लहसुन प्याज तो नहीं खाते, पर हमारे यहां तामसिक, ब्राह्मण में तामसिक क्या है, अचार, चटपटा भोजन, बहुत गर्म मसाले वाला भोजन, है ना, और क्या, चाय कॉफी, बहुत स्ट्रांग चाय कॉफी पीना, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब क्या उत्तेजना पैदा करते हैं हमारे शरीर, ये उत्तेजना, आप उत्तेजना पैदा हो रही है तो आप कहां से योग लगाओगे? तो मुझे अगर ये जैसे हमारा क्या है, एक पासपोर्ट है, पवित्रता वीजा है, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा कुछ मुझे करना ही नहीं है। आप कहोगे बाबा और मुरली सारा दिन करते रहे तो हम क्या काम कैसे करेंगे? नहीं, मेरा एक परफेक्ट काम होता है। हम पेशेंट देखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, बाबा के साथ हम जब कनेक्टेड रहते ना तो हमें देखा डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, एकदम बुद्धि में टच हो जाता है, ये बीमारी है, इसका कारण ये है, जड़ समझ में आ जाती है और बीमारी एकदम डायग्नोज हो जाती है, इलाज भी ठीक हो जाता है बाबा से इतनी, और हर काम एक्यूरेट हो जाता है, कभी कोई काम मिस ही नहीं होता है, जहां जरूरी है वहां पहुंच जाते हैं, कभी भी गलती नहीं होती है। तो ये जितना आप बाबा को परख लो, बाबा को अपनी दिल में रख लिया, तो ये पहली शक्ति आ गई ना, तो निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, और दिव्य हो गई तो क्या होता है, फिर आपका चित्त, उसके नेक्स्ट रहता है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, वो शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है, तब चिंतन चलता है, तब आपकी बाबा की मुरली रिवाइज होती है, क्योंकि चित्त अगर शांत एकाग्र आनंद में हो गया ना, तब मुरली की फाइल खुल जाती है, जो मुरली सुबह सुनी थी ना, वो मुरली अंदर बजने लगती है, फाइलें खुल जाती हैं, सत्व प्रधान फाइलें खुलती हैं। अगर दिल में असत्य है तो विवेक, इसको परखने की शक्ति को कहते हैं विवेक, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम, वो बंद हो जाती है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है और चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है, तो फिर फाइलें कौन सी खुलती हैं, तमो प्रधान फाइलें, उसने ये कहा था, उसने ऐसा कहा था, आज ये करना है, आज वो करना है, बाबा की बात याद नहीं आएगी, बस सब कुछ याद आएगा, बाबा की मुरली का मनन नहीं चलेगा, मनन चिंतन मंथन सिमरन नहीं चलेगा, तो मगन में रहेंगे, मगन नेगेटिव बातों में मगन रहेंगे, दुखों में मगन रहेंगे, अशांति में, कीचड़ में मगन रहेंगे, कीचड़े का मंथन करते रहेंगे। और अगर दिल में बाबा है तो विवेक, मेरा तीसरी आंख खुल गई, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई और चित्त शांत का अन्न में हो गया, तो अपने आप मुरली अपने आप चलती है। एक बार मुरली सुनी, वैसे तो मैं हमेशा मुरली जेब में रखता हूं, मुरली तो बाबा का लव लेटर है ना, आशिक माशुक का रिश्ता है ना, बाबा कौन है, माशुक, और हम कौन है, आशिक, है ना, तो मुझे बाबा का वो गीत, एक वैसे तो फिल्म का गीत है, तो बाबा जैसे मेरे को आज सुबह से ऐसा गीत बज रहा था मेरे दिल में, एक वैसे बहुत बचपन का सुना होगा, शायद 52-53 साल पहले सुना होगा, क्योंकि हम लोग फिल्में तो नहीं देखते थे, पर गीत तो चलते थे गलियों में, शादियां होती तो सुबह से गीत बजने शुरू होते थे, है ना। तो एक गीत है ना, वो बाबा शिव बाबा जैसे गीत गा रहे हैं, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों की मैं तुझको दुल्हन बनाकर, है ना, ले जाऊंगा शांति धाम, है ना। कहां ले जाएगा बाबा हमको? दिल के झरोखे में, अपने दिल में बिठा करके बाबा कहां ले जाएगा मुझको? और यादों की तुझको दुल्हन बना, यादों का मतलब जितना याद करोगे ना तो तुमको दुल्हन बनाऊंगा, और अपने साथ कहां ले जाऊंगा? शांति धाम। फिर शायद नेक्स्ट लाइन आती है, फिर तेरे जलवे पराए भी होंगे, मतलब तेरे को वहां से भी सुखधाम में आना है, पर आंख तेरी आंखों में क्या होगी? मेरी झलक होगी। तो शिव बाबा हमारे संस्कारों में होगा, राइट। शिव बाबा सत्ययुग में हमारे साथ नहीं होगा, पर उसके संस्कार हमारे साथ होंगे, रहम दिली के, कल्याणकारी के, सारे गुण उसके हमारे अंदर होंगे। इसलिए क्या होगा, हमारी आंखों से, हमारे मस्तक से क्या दिखाई देगा? भगवान दिखाई देगा, मतलब उनको सबको फील होगा भगवान, इसलिए भगवान भगवती कहते हैं देवताओं को ना। तो हमारे द्वारा सबको यही फील होता है ना कि ये भगवान भगवती है, अभी भी ऐसा फील होगा। तो प्रैक्टिकल मुझे आज सुबह से गाना मेरे अंदर बज रहा था बचपन का, है ना, 52-53 साल पहले सुना होगा। तो ये जो है, इस तरह से जब दिल में जब बाबा है तो ऑटोमेटिक विवेक, तीसरी आंख खुली हुई है, निर्णय शक्ति दिव्य है, तो चित्त शांत एकांत में, तो मुरली का चिंतन होता है, तब मनन होता है, तब मुरली रिवाइज होती है। दिल में जो होता है ना, उसकी बात रिवाइज होती है। बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें सत्ययुग राजा की याद चाहिए और पवित्रता का बल चाहिए, तो उसको बार 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 रिवाइज होता है, ABCD बार बार रिवाइज होता है। बच्चे, बाबा ने कहा, बच्चे तुम पक्का करो, मैं देह नहीं चलते फिरते याद करो, मैं देह नहीं, मैं इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूं। बार बार रिवाइज करो, अंदर गहराई में जाओ, देखो कैसे कैसे चला रही हूं मैं, आत्मा निकल जाऊं तो शरीर एकदम डेड बॉडी हो जाए, किसको भी वैल्यू नहीं है। तो रिवाइज करो, परमात्मा कैसे अति, मैं कैसे इसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, मिट ही नहीं सकता है, और फिर परमात्मा कैसे ऊपर बैठ करके, वो भी छोटी सी बिंदु है, और उसको वो कैसे सारे विश्व को चला रहा है, वो सात चैतन्य आत्मा को जो पावर हाउस है, वो सारे विश्व को, इतनी सारी आत्मा को चला रहा है, खाली मनुष्य को नहीं चला रहा है, 84 लाख योनियां हैं उनकी भी, उन आत्माओं को भी वो ही चला रहा है, साथ में पांचों प्रकृति के पांचों तत्वों को भी चला रहा है, प्रकृति पति है ना। कैसे वहां बैठा, एकांत आराम से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं उसको, संकल्प चलता है क्या? परम सत्य है बाबा, परम पावन है, परम शांत है, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है, परम अतिंद्रिय सुख है, परम आनंद है, परम शक्तिमान है, और बाबा कैसे सारे विश्व को चलाता है, विश्व नियंता है ना कहते हैं, विश्व नियंता कहते हैं ना उसको, तो बाबा कैसे सारे विश्व को चला रहा है। तो ऐसे अपने आप को जब उसका हम मन बार बार उसको रिवाइज करते हैं, बाबा की एक एक मुरली की बात को रिवाइज करते हैं, और जब दिल की लगन से, सच्चे दिल की लगन से जब बार बार रिवाइज होती है ना, फिर सच्चे दिल की लगन से उसको हम क्या करते हैं, उसके एक एक महावाक्य की गहराई में जाते हैं, हर महावाक्य है। कहते हैं कहीं हमें योग कैसे लगाएं, योग कुछ और नहीं, योग माने रिवाइज और रियलाइज, बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य को रिवाइज करो रियलाइज करो, रिवाइज करो रियलाइज करो, सारा दिन मुरली के, मेरा तो सारा दिन यही काम रहता है, आप लोग तो शायद बिजी रहते हैं, मैं तो इजी रहता हूं, सारा दिन मैं मुरली के महावाक्यों को, एक एक महावाक्यों को मैं बार बार रिवाइज करता हूं। चाहे मैं कार में बैठ के हॉस्पिटल जा रहा होता हूं, एक पेशेंट देखा, एक मुरली का महावाक्य, फिर दोबारा अंदर से बजा उसको, फिर रिवाइज रियलाइज किया, 10 सेकंड में रिवाइज हो जाता है, वो रियलाइज भी हो जाता है, चिंतन भी चल जाता है, मंथन और सिमरन भी हो जाता है। तो उसको बहुत गहराई से, अमृत वेले भी यही करना होता है, सारे मनन चिंतन करो, सुबह सुबह मंथन करो, तो मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को सारा दिन खाते रहो, तो मनन रिवाइज माना अंदर रिवाइज हुआ, फिर चिंतन माना, चिंतन की गहराई चिंतन माना, सच्चे दिल के लगन से उसको उसकी गहराई में चले जाओ, उस मावा की गहराई में, गुह्यता में जाओ, स्पेशली जैसे आत्मा की गहराई में जाओ, परमात्मा की गहराई में जाओ। फिर संबंध जो है ना, बाबा से मैं करंट कैसे खींचूं, उसके रहस्य में जाओ। क्या रहस्य है कि मैं करंट कैसे खींचूं, मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, मेरे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो रखी है, मेरे को डायबिटीज हो रही, कंट्रोल में नहीं आती है मेरा, मेरे जो है मेरी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्या करूं मैं, मेरे को इतने कमर में दर्द रहता है, दवाई खा के भी ठीक नहीं हो रहा है, घुटने भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ऑपरेशन करा के भी ठीक नहीं हो रहे हैं, पेट में खाना पचता ही नहीं है, बहुत एसिडिटी बनती है, दवाई खाते खाते भी ठीक नहीं हो रहे, तो क्या करूं, वो सर्व संबंध की फिर रहस्य क्या है, जब तक सर्व संबंध के महीन सार वाली याद नहीं होगी ना, अगर मेरा एक भी संबंध किसी और से है ना, किसी देहधारी से है, तो करंट खींच नहीं सकते। आप देखो जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप एक एक प्लग लगा, दो होते हैं ना उसके अंदर चार्जर में, एक लगाओ मोबाइल चार्ज होगा क्या, मोबाइल चार्ज होगा, बोलिए। अच्छा दोनों लगा दिए मैंने कि तो आधे लगाए, पूरा नहीं लगाया अंदर तक, चार्ज होगा मोबाइल? तो हमारे पास कौन सी चार्जर है, मन और बुद्धि है ना, खाली बुद्धि लगाओ तो भी चार्ज नहीं होगा, और खाली मन लगाओ तो भी नहीं होगा, बुद्धि और मन दोनों पूरे लगाने पड़ेंगे 100%, तब बैटरी तब चार्ज होगा। तो सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, किसी भी एक देहधारी से मेरा थोड़ा सा भी संबंध है ना, थोड़ा भी लगाव, थोड़ा भी झुकाव, थोड़ा भी प्रभाव, थोड़ा भी टकराव है ना, तो बाबा से मैं बैटरी करंट खींच नहीं सकता। जब बाबा से करंट नहीं आएगी तो कैसे होगा, मैं कैसे अपने हार्ट को चलाऊंगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक कैसे चलेगी, हार्ट कैसे ब्लॉकेज खुले, खुली नहीं सकती है, कैसे मेरा लीवर ठीक होगा, कैसे मेरी डायबिटीज ठीक होगी, हो ही नहीं सकती है। मेरी बुद्धि कहीं थोड़ी सी भी जा रही है, कहीं भी थोड़ा किसी संबंध में जा रही है, संपर्क में किसी दोस्त की तरफ जा रही है, वो भी तो भी ठीक नहीं होगा। तो ये रहस्य, तो ये रहस्य है कि सर्व संबंध के महीन सार वाली याद चाहिए। और फिर राज किस बात का, ड्रामा, ड्रामा में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी इसकी इसमें इसके राज में जाओ कि मेरी ये बीमारी या मेरी प्रॉब्लम इसके साथ ऐसी क्यों है, इस व्यक्ति के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, ये मेरे हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों करता है, मेरे से मिसबिहेव क्यों करता है, मैं तो कभी नहीं करता, ये क्यों करता है, ये क्यों करती है, इसके राज में चले जाओ, ड्रामा के राज में। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सचमुच में मैंने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। तो रियलाइज में तीन बातें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, चिंतन, मंथन, सिमरण, है ना। तो चिंतन में आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये मेरी कमी है, मेरे अंदर कमी थी, मेरे अंदर कमजोरी है, जरूर मेरे कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार मैं करता हूं किसके साथ, जाने अनजाने मेरे अंदर ऐसा चीज है जिससे ये प्रॉब्लम मेरे को आती है। तो इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन, सच्चे दिल से इसको रियलाइजेशन, सच्चे दिल से महसूस करेंगे जब मुझे ये बनना है, मुझे ये प्रॉब्लम खत्म करनी है, मुझे सबके साथ संबंध मधुर बनाने हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरे अंदर क्या होगा, अपनी कमजोरी दिखाई देगी। जैसे मुझे वहां तक पहुंचना है तो रास्ते में क्या क्या ब्लॉकेज है, कहां का रास्ते ऊपर नीचे है, खड्डे है या नीचे ऊपर है, मुझे महसूस होगा मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसको खत्म करना है, तो तब हमारी है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे ना, रहस्य क्या चीज, गहराई, गुह्यता, रहस्य और राज, उसकी गहराई में उसको उतर जाओ, गहरे चले उसमें, खो जाओ, इसे बोलते चिंतन। चिंता नहीं, चिंता में लोग खो जाते हैं, हम चिंतन कर रहे हैं किसका, बाबा के मुरली के महावाक्य का, ABCD का, है ना। तो चिंतन करते जब से जब खो जाते हैं ना, तो फिर मंथन शुरू होता है, तब दिल, बुद्धि, मन और तन, वो बुद्धि मन तन चारों में क्या होता है, एकदम से एक एनर्जी फैल जाती है, है ना, वो बाबा की मुरली, उसका सार, उसके वाइब्रेशन सारी तन तक, तन एक एक रोम रोम में फैल जाते हैं, तब मंथन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं, संकल्प, भावना, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, टीम कहते हैं इंग्लिश में। 99 की मुरली में बाबा ने बताया था, 31 दिसंबर 99 की मुरली में, मन के चार एस्पेक्ट हैं, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। जब संकल्प, भावना कैसे बनते हैं, जब कोई संकल्प हमारे अंदर, जब संबंध से, किसी संबंध में, सपोज जैसे हमारा माँ से संबंध है लौकिक में, या बाबा से हमारा दिल का संबंध है, बाबा मेरे दिल में है, तो बाबा ने जब मुझे कोई बात की, संकल्प दिया, मुरली में संकल्प दिया, बच्चे तुम्हें ऐसा करना है, तो वो बात बार बार रिवाइज होगी, बार बार चिंतन में आएगी, तो वो संकल्प भावना बन जाएगा। संकल्प एक बिंदु है, वही मैंने 20 बार किया तो क्या हो गया, भावना बन गई, और जिसके प्रति किया, बाबा ने कहा जब तुम मुझे सच्ची दिल से, दिल जब सच्ची दिल से मुझे याद करते हो ना, मेरी दी हुई बात को याद करते हो, कि बच्चे याद क्या है, बाबा की दी हुई बातों को याद करना, याद क्या है बोलो, बाबा ने मुरली में जो बात सुनाई ना, वो याद आए कि मुझे ऐसा करना है, ये है बाबा की याद। सहज है, मुश्किल है, बोलो, यही सच्ची याद है। बार बार मनन करें, रिवाइज करें, चिंतन करें, यही बाबा ने अभी नौ तारे की मुरली पढ़ना, सेकंड पेज में नीचे की लाइन है, यही बातों को बार बार चिंतन करना, यही सच्ची सच्ची याद है। दूसरे पेज पर मुरली में नीचे नीचे है, आत्मा कैसे बहुत छोटा सा बिंदु है, कैसे सारी शरीर को चला रहा है, परमात्मा कैसे छोटा सा बिंदु है, सारे विश्व को चला रहा है, इसी का चिंतन करते रहो सारा दिन, इसको मनन चिंतन रिवाइज करते रहो, रिलाइज करते रहो, यही सच्ची सच्ची याद है। तो बाबा की बात को जब याद करते हैं ना, तो क्या होता है, तो सारे रोम रोम में एनर्जी चली जाती। दादियों के हाथ लगाते हैं, दादी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, हाथ में करंट जैसे रुई जैसे हाथ थे, इतनी स्पिरिचुअल पावर थी ना, रोम रोम में हाथ, रोम रोम में करंट, ज्ञान की करंट, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, सुख आनंद की शक्तियों की करंट फील होती थी। तो वही हमारे अंदर भी तभी आएगी ना जब हम उसमें मगन हो जाएंगे, जब इस करते करते चिंतन करते करते उसमें खो जाएंगे तो मंथन शुरू होगा। तो मंथन माने जैसे संकल्प हमने किया ना, तो भावना हो गई, तो बाबा तक वो बात पहुंचेगी, तो मेरे वाइब्रेशन, उस भावना के वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचेंगे, और बाबा कहते जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुमको हजार गुना याद करता हूं। तो बाबा मुझे हजार गुना याद करेगा, तो बाबा की वाइब्रेशन मुझे पहुंचेंगे, तो क्या होगा, टेलीपैथी होगी नहीं होगी। तो बाबा मैं याद कर रहा हूं एक संकल्प, बाबा कर रहा हजार, तो क्या छत्रछाया बन गई, तो कैचिंग पावर टचिंग पावर हो गई। तो जो मैं याद कर रहा हूं बाबा मुझे टच कर रहा है, कैचिंग मैं कैच कर रहा हूं, बाबा मुझे टच कर रहा है, मैं कैच कर रहा हूं। समझ में आ रही, मेरी जो समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी समस्याएं तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, वो क्या हो रहा है, वो अपने आप ही उसका समाधान मेरे पास आ रहा है। तो कैचिंग पावर टचिंग पावर। अब जब ये प्यार ऐसा प्यार हो जाता है ना, बाबा का आशिक माशुक वाला प्यार हो जाता है, तो जहां आशिक माशुक वाला प्यार होता है वहां पर क्या होता है, उसी भावना में हम रहते हैं, उसी वाइब्रेशन में खोए रहते हैं, बिंदु 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 ऐसे चलते जाओ, तो ये सर्कल पूरा हो गया ना, वृत्त बन गया, इसी को कहते हैं वृत्ति। तो यही अंदर अंदर घूमता रहेगा सारा दिन, यही संकल्प चलता रहेगा, बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने को सदा मेरे साथ मुझे यूज करो, हर संबंध से मेरे साथ कंबाइंड रहो, पवित्रता और याद का बल जमा करो, बार बार आज का वरदान बुद्धि में आएगा, अवैक्त स्वरूप की साधना को पक्का करो, तुम्हें अवैक्त फरिश्ता बनना है, बच्चे तुम्हें जल्दी मेरे पास आ जाओ, अभी टाइम पूरा हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी संपन्न संपूर्ण बनो, बाबा मुझे कह रहा है बच्चे तुम सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, ये नियम मर्यादा में पक्के बनो, कहीं भी कमजोरी ना हो, थोड़ी सी भी कहीं भी लूप होल ना हो। तो बार बार क्या होएगा अंदर से, जब ऐसा करते तो क्या होता है, तो जैसे पंखा होता है ना, पंखा देखिए तीन पंखुड़ी होती है पंखे की, जब पंखा लगातार घूमता है तो क्या होता है फिर पंखुड़ी दिखाई देती है, पंखुड़ी दिखाई नहीं देती, और पंखा घूम रहा होता है तो क्या होता है, और तेज घूमता है तो क्या होता है, हवा आती है। इसी तरह से जब हमारे अंदर ये संकल्प, वही संकल्प बाबा के दिए हुए संकल्प बार बार तेजी से बुद्धि में घूमते हैं ना, मंथन माना क्या, दही को जब हम बिलोते हैं तेजी से तो क्या होता है, पर यहां पर क्या करना पड़ता है, धैर्यता, गंभीरता और शीतलता से करना पड़ता है। इसलिए बाबा से करंट खींचने तो क्या होगा, पेशेंस। कभी मक्खन निकालते तो हम थोड़ी थोड़ी ऐसे दो बार किया ऐसे, फिर देखते हैं क्या मक्खन आया कि नहीं आया, लगातार करते हैं ना, और सीरियस होके करते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा यूं कर लिया, हल्के हाथ से कर लिया, नहीं, सीरियस होके करते हैं। और फिर शीतलता, गर्म होता है तो ठंडी बर्फ भी डालते हैं तब मक्खन निकलता है। तो धैर्यता, गंभीरता और शीतलता के साथ हम मक्खन को, वो दही को बिलोते हैं, मंथन करते हैं, तब जाके क्या होता है, तब अंदर से ज्ञान की, ज्ञान स्वरूप स्थिति अंदर से फील होगा, पवित्रता अंदर फील होती है, रियल में पवित्रता अंदर से फील, जैसे पंखे के नीचे हवा फील हो रही ना, ठंडी हवा फील हो रही है, कमरे में गर्मी है उसके नीचे पंखा हवा फील हो रही है, और तेज चलाओ तो और फील होगी, और तेज पंखा चलेगा, दूर तक चलेगा। इसी तरह जितना हम बाबा की मुरली को रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, अंदर से रियलाइज करते जाते हैं, महसूस करते, सच्चे दिल से महसूस करते जाते हैं, अंदर पवित्रता फील होने लगती है, वृत्ति से हमारी वायुमंडल बन रहा है, वायुमंडल बनता जा रहा है, अंदर फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, पवित्रता फील हो रही है, शांति, एकदम विचार रियली में स्लो हो गए हैं, मैं स्लो कर नहीं रहा हूं, अपने आप ही स्लो हो गए, आने ही बंद हो गए संकल्प, और प्यार, सबके प्रति प्यार फील हो रहा है, सब आत्माएं, हम आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, फील हो रहा है अंदर से, जिसके प्रति दुश्मनी का भाव था वो भी खत्म हो रहा है, टकराव भी खत्म हो रहा है, उसके प्रति भी प्यार की फीलिंग आ रही है, अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है ना, प्राकृतिक शक्ति हम, बस बाबा ही मेरा है, एक बल एक भरोसा, मेरा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, प्रैक्टिकल में फील होता है। निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ दिव्य बुद्धि क्या होती है, फील हो रही है, एकदम शांत चित्त, चित्त एकदम शांत एकाग्रमय हो गया, तो रियल में फील होता है। तो वो अंदर से ऐसी फीलिंग होती है, और वो फीलिंग जो आती है ना, तो विस्तार को सार मिलने शक्ति बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, और समेटने की शक्ति आ जाती है। अश्री बन के परम धाम कर में अश्री बाप से कमांड होते हैं, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे बैटरी चार्ज होती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हम वहां पर हैं, संकल्प परे चले गए, तो बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं शरीर में, जो भी बीमारी है वो कम होने लगती है, दर्द खत्म हो जाती है, हार्ट की नसें खुलने लगती हैं, लीवर ठीक होने लग जाता है, मन में जो बेचैनी एंजाइटी खत्म होने लगती है, डिप्रेशन खत्म होने लगता है, आनंद के हार्मोन निकलने लगते हैं सारी, और जब भी समस्या आपके अंदर इतना परिवर्तन आने लगता है, अपने अपने अंदर से आप परिवर्तन महसूस करेंगे, और आप इतने मगन हो जाते हैं ये मंथन करते करते, जैसे मक्खन खाने बिजी हो जाते हैं ना, मगन हो जाते हैं, तो पवित्रता, शांति, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद है ना, एक एक शक्ति अंदर से महसूस, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति, वो अंदर से प्रैक्टिकली में आपको फील होने लगती है। ये तो हो गया मंथन, ये महसूस हुआ, अभी तो पावर तो महसूस हो गई आपको योग करते समय। सिमरण क्या चीज है, सुबह सुबह आपने मंथन किया, महसूस किया बाबा के साथ, एक एक एनर्जी को महसूस किया, बाबा के संबंध को महसूस किया। सिमरण माना, जब आप कार्य में आते हो ना, तो उसको कार्य में लगाओ, कार्य में लगाओ माना उस जो पवित्रता को महसूस किया, उस पवित्रता की अनुभूति के साथ कर्म करो, लोगों से मिलो, उस शांति की शांति की महसूसता के साथ लोगों को मिलो, उस प्रेम की महसूसता के लोगों से मिलो, क्योंकि बिना कर्म किए अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जब रिकॉर्डिंग होगी तो अनुभव होगा। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के पुराना स्वभाव संस्कार समाप्त नहीं होता है। तो अनुभूति भी करने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, रियलाइजेशन करें। इसलिए बाबा ने कहा अंतिम कोर्स कौन सा होगा, रियलाइजेशन कोर्स होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस हम रियलाइज करते रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, मेरे उससे संबंध। दादी की जान की क्या बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है, यही रियलाइज होता रहे, यही रिवाइज होता रहे, सारा दिन चिंतन चलता रहे, मंथन, मंथन में दिल बुद्धि मंथन पूरे के पूरे एकदम उसमें खो जाए, समा जाए, मगन हो जाए, और तब जब चलाएंगे ना मथाने को, पंखा चलेगा तो अंदर पवित्रता आएगी, रियल में पवित्रता बनानी नहीं पड़ेगी, किरणें नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल में पवित्रता क्या होती है, शांति क्या होती है, सत्य प्रेम क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख आनंद, प्रैक्टिकल में रोम रोम भर जाएगा अंदर से, दिल बुद्धि मन तन एकदम रोम रोम भरपूर हो जाएगा, वायुमंडल बन जाएगा, आभा मंडल तैयार हो जाएगा, उस आभा मंडल में जो भी आएगा ना, वो भी मैंने कहा ना मगन रहने वाले क्या होते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं, जो भी आएंगे वो भी उसको महसूस करेंगे। और कहां तक फैल जाएगा आभा मंडल, दूर दूर तक फैल जाएगा, 10 फुट, 15 फुट, 16 फुट, 28 फुट, 100 फुट दूर तक, जैसे दादी आती थी, बाबा जब आते हैं, कहां तक फैल जाता है वायुमंडल, कहां तक फैल जाता है, शांति का वायुमंडल, प्रेम का वायुमंडल, कहां तक, पूरे हॉल में फैल जाता है ना, बाहर बैठे भी महसूस करते हैं ना बाबा आया हुआ है, इवन वीडियो चलता है तो वीडियो भी महसूस करते हैं, बाबा के वाइब्रेशन महसूस करते हैं ना हम लोग। तो सेम चीज हमारे साथ होती है, ब्रह्मा बाबा के साथ भी कैसे होता था, दूर से बाबा को देखते वाइब्रेशन में आता था आदमी, परिवर्तन हो जाता था। आज भी देवताओं की मूर्ति के सामने परिवर्तन होते हैं, ये हमारा अभी की स्टेज होगी ना, तो ऐसे मगन जो अवस्था है ना वो हमारी बनती जाएगी, और जब रिकॉर्ड पर वो भी परिवर्तन नहीं करेगी हमारा। परिवर्तन कब होगा, जब उस स्थिति में रहकर हम कर्म करेंगे, तो देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पानी पीना, हाथों से कर्म करना, चलना, जब इस स्थिति में रहेगा ना सारा दिन, लोगों से मिलना जुलना करेंगे तो अंदर रिकॉर्ड होगा, तब अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, अनुभव करते जाएंगे, अनुभव बढ़ते जाएंगे, डेली करते करते एक दिन सब तरह के अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, ज्ञान रिकॉर्ड हो गया ना, अभी पवित्र स्वरूप बन जाएंगे, शांत स्वरूप बन जाएंगे, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप बन जाएंगे, सर्वशक्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो चलते फिरते हमारे चेहरे से क्या महसूस होगा, बाबा महसूस होगा, हम मास्टर सागर बन जाएंगे और चलन माना कर्म से हमारा देखना सुनना सब कुछ अलौकिक बन जाएगा और तब जाके हमारा व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा माना तब जाके हमारे व्यवहार में सरलता आएगी, नम्रता आएगी, दया आएगी, रहम करुणा आएगी, उदारता आएगी, मधुरता आएगी, धैर्यता आएगी, गंभीरता आएगी, तब रमणीकता आएगी, तब सहनशीलता प्रैक्टिकल व्यवहार में आएगी, तब जाके हमारी दृढ़ता आएगी, तब संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हमेशा हमारे चेहरे पे बनी रहेगी, है ना। तब हम निमित्त भाव निर्माण भाव हमारे अंदर आएगा, तब निर्मल स्वभाव बनेगा, तब प्रैक्टिकल में हम आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमानबरदार बनेंगे। बाबा का हर फरमान मुरली का याद रहेगा मुझे आज ये करना है। आज्ञाकारी माना पवित्र सदा पवित्र भव निर्मल सदा योगी भव। वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ईमानदार माना जैसे जो बात हुई ना सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक सच्ची सच्ची बात बाबा को रोज पोता मिल देंगे। अभी तो पोता मिल देने का टाइम ही नहीं होता है, चार्ट बनने का टाइम ही नहीं, क्योंकि हम ईमानदारी नहीं ना, ये ईमानदारी नहीं है। मैंने गलत किया तो भी मैंने बाबा को नहीं बताया, ईमानदारी नहीं है ना। ईमानदारी का मतलब क्या है, सोने के पहले सच्चा सच्चा एक लव लेटर बाबा ने मुझे दिया सुबह सुबह, एक लव लेटर मैं बाबा को लिखूं सोने के पहले, उसे कहते हैं ईमानदार। जो भी मैंने अच्छा किया बुरा किया सब कुछ बुद्धि मन को पूरा बाबा को दे दिया। ऐसे करते करते एक दिन क्या होगा, हमारी दिल सच्ची और साफ कंप्लीटली बन जाएगी और तो तब कहेंगे कि हम मनन करते करते हम क्या हो गए, मगन, है ना। मनन मनन से हमारी मगन अवस्था बनती जाएगी, अर्थात कर्मातीत बनते जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। निर्विघ्न के साथ साथ हम क्या बन जाएंगे, विघ्न विनाशक बनते जाएंगे, सदा तृप्त आत्मा बनते जाएंगे, संतुष्ट आत्मा बनते जाएंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या बन जाएंगे, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे। हमारी अव्यक्त जो इसे कहते हैं अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसको निरंतर बनाए रखना, इसके लिए चार नियम चार मर्यादा मैंने पहले भी शेयर की। पहला संपूर्ण पवित्रता, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, सात गुणों को बढ़ाने वाला, ऐसा कुछ भी मत खाओ, राजसिक और तामसिक मत खाओ, बाबा और मुरली के संग के अलावा कुछ और मत करो, दैवी गुणों की धारणा, रिकॉर्ड बन जाए कि मैंने 6 मिनट से गुस्सा ही नहीं किया, मेरे अंदर धीरेता बहुत है, कभी जल्दबाजी नहीं करता हूं, है ना, गंभीरता सीरियस होकर बाबा की बात को फॉलो करता हूं, सहनशीलता पक्की, कुछ भी बात को रिएक्शन नहीं करता हूं, सहन करके हर बात संभाल लेता हूं, सहनशीलता माना हर बात को सहन करके संभाल लेना, ये अंदर से पक्का करो। ऐसी जब प्रैक्टिकल स्थिति बनेगी ना हमारी, रिकॉर्ड बनता जाए मधुरता, तो हर चीज का संतुष्टता, हमेशा मुस्कुराते रहना, कुछ भी दर्द हो रहा है तो भी मुस्कुराते रहो। दादी रतमनी को देखते हो ना, कितना संतुष्ट है, कितनी हमेशा मुस्कुराती रहती है, देवान से परे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना। तो वो तब हमारे अंदर, तब हमारा व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो आहार, खाली मुख का आहार नहीं, आंखों का आहार क्या है, हम मोबाइल टीवी क्यों देखें, हम कानों से गलत क्यों सुने, किसी की बुराई क्यों सुने, है ना। तब हमारा मन का हार भी क्या है, संकल्प, शुद्ध संकल्प, मुरली के अलावा कुछ और क्यों देखें, क्यों सुने। तो ऐसी पक्की जब हमारी स्थिति बनेगी, और विहार, विहार माना हमारे चाल चलन ऐसा परफेक्ट हो जाएगा, और तब हमारी, तब हम कर्मेंद्र जीत बनेंगे, तब हम माया जीत बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे, माना शरीर हमारे कंट्रोल में चलेगा, ये पांचों पदार्थ हमारे साथ चलेंगे, और हम तब जाके क्या बनेंगे, विकर्मा जीत, हमसे पाप कर्म होने बंद हो जाएंगे बिल्कुल, तब कर्मातीत बनेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, तब बीज रूप बनके, मास्टर बीज रूप बनके, कलबिश की जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड होके सारे कलबिश को सकाश देते रहेंगे। तो ये हमको तपस्या करनी है, राइट। तो मनन द्वारा क्या बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी बोलो। तो क्या करना है, पहली पहली बात एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, दिल को सच्चा और साफ बनाना। दिल सच्ची माना जिस दिल में बाबा के अलावा कोई दूसरा ना हो, साफ माना जिसकी मुरली के अलावा जिसके दिल में कुछ और ना बजता हो, वो बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करता रहेगा, उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, तीसरी आंख खुलेगी तो निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत आनंद में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मुरली का क्या हुआ, चिंतन चलेगा, शुभ चिंतन चलेगा, शुभ चिंतन से शुभ भावना पैदा होगी, और शुभ भावना से बाबा के वाइब्रेशन, बाबा के वाइब्रेशन मेरी तरफ आएंगे हजार गुना, बाबा छत्र छाया बन के हमेशा मेरे साथ रहेगा, फिर मेरी शुभ वृत्ति बन जाएगी, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, और उसमें पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद में सदा रहूंगा, और उसमें रहकर कर्म करूंगा तो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, प्राप्ति अंदर चेहरे पे दिखाई देगी, चलन में दिखाई देगी, तो धीरे धीरे तृप्ति होती जाएगी, तृप्ति होती जाएगी, तो हम तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्ण आत्मा, इसी को कहते हैं मगन अवस्था। ओम शांति। चलिए भाई, हम 16 मिनट हमारे पास हैं, हम 16 मिनट पावरफुल स्थिति में बैठते हैं, इसे रिवाइज और रियलाइज करते हुए बाबा की मुरली का, आज की मुरली का, या कल की बाबा की जो शाम को मुरली चली थी उसको रिवाइज करते हुए, कल सुबह की मुरली, संडे की सुबह की मुरली, या बाबा की शाम की मुरली, वो परसों वाली 18 तारीख वाली, उसको रिवाइज और रियलाइज करते हुए सभी बाबा की याद में अल सीधे होके बैठो, अपनी डायरी पेन हटा दो, साइड में रख दो, बैग है तो बैग साइड में रखो, कमर सीधी, गर्दन सीधी हो, और अंदर से विचार सागर मंथन करते चलो, चिंतन मंथन करते हुए उसमें मगन हो जाओ, मनन करते करते मगन हो जाओ। पहले दिल में बाबा को बिठा लो, अपने दिल में, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, महसूस करते जाओ, सच्चे दिल से रियलाइज माना, महसूस करते जाओ, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो। बाबा ही मेरा संसार है, चले जाओ सभी बाबा के पास, मन बुद्धि सहित मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं, पावर हाउस से कंबाइंड हूं, अपनी मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा की तरफ फोकस कर दो, हम एबीसीडी को ही रियलाइज करते हैं, अंदर से रिवाइज करें, बाबा जी ने, बाबा ने जो हमें समझ दी है कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, महसूस करें कैसे मैं आत्मा भ्रुक्ट के मध्य अति सूक्ष्म, इन आंखों से ना दिखाई देने वाली उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करें, कैसे मुझ आत्मा से सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मन के माध्यम से विचार भावनाओं वृत्ति और स्मृति के माध्यम से शरीर के एक कोशिका को ज्ञान के एनर्जी, पवित्रता के एनर्जी, शांति के एनर्जी, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की एनर्जी, अर्थ सहित पवित्रता को अर्थ सहित अंदर महसूस करें, शांति को अर्थ सहित महसूस करें, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम को अर्थ सहित अपने आत्मा से प्रकंपन अपने शरीर के एक सेल में महसूस करें, अतिंद्रिय सुख की एनर्जी को महसूस करें। आनंद की एनर्जी को अंदर महसूस करें। मुझे आत्मा से सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मन के माध्यम से शरीर के एक कोशिका में जा रही है। अभी आप रिवाइज अपने अंदर महसूस करें, सच्चे दिल से महसूस करें, मैं आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परम पिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाओ। मन बुद्धि दोनों ही उसमें लगा लो। बाबा ही मेरा संसार है, अब इसी को अंदर अंदर रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो, अर्थात मनन करते रहो। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर द्वारा मुझ आत्मा को ज्ञान अर्थात सत्य की समझ पवित्रता शांति सत्य और निस्वार्थ प्रेम उसके वाइब्रेशन महसूस करें अपने अंदर। सुख आनंद और अशक्तियां अब महसूस करें, जैसे कि मैं आत्मा अभी सूक्ष्म वतन में हूं, बाप दादा जो ज्ञान के सागर हैं पवित्रता के सागर हैं उस सागर में समा जाओ। प्रैक्टिकल में उस अवस्था को अपने अंदर महसूस करो, उसमें मगन हो जाओ। उस वायुमंडल को अपने अंदर महसूस करो। मैं आत्मा अपने मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में समाये हुए हैं। आत्मा ज्ञान सागर में समाये हुए। महसूस करो उस ज्ञान सागर की लहरों को। ज्ञान सागर की गोद में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ ज्ञान सागर में समाई हुई। पवित्रता के सागर में समाई हुई। शांति के सागर में समाये। महसूस करें शांति को, गहरी शांति को में चले जाएं। एबीसीडी के अलावा और कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से कंबाइंड और ड्रामा को फुल स्टॉप। सच्ची शांति और कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा अपने मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ परमधाम घर में सूक्ष्म वतन में रूहानी स्नेह के सागर में समाई हुई।